खंड 5 प्रगतिशील समीक्षा। चौथे दशक के मध्य में जिस समय शुक्लोत्तर पीढ़ी के आलोचक छायावाद की प्रतिष्ठा में संलग्न थे, स्वयं छायावादी कवियों ने युगांत की घोषणा करके नए युग का आह्वान किया। प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पद से साहित्य के युगोचित नए उद्देश्य स्पष्ट किए। इस प्रकार हिंदी में संगठित रूप से प्रगतिशीलता का नया दौर शुरू हुआ और इसके अनुसार आलोचना के क्षेत्र में भी नई मान्यताएं प्रकट होने लगीं। आलोचना के इस प्रगतिशील दौर के क्षेत्र में भी नई मान्यताएं प्रकट होने लगीं। आलोचना के इस प्रगतिशील दौर में जो आलोचक अपेक्षाकृत सिद्धांतवादी थे, उन्होंने घोषित रूप से मार्क्सवाद को आधार बनाया। ऐसे मार्क्सवादी आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा अग्रणी हैं। सबसे पहले शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1937 ईस्वी में विशाल भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक एक क्रांतिकारी लेख लिखा। इस लेख में प्रगतिशील साहित्य के सिद्धांतों को सूत्रबद्ध करने के साथ ही हिंदी साहित्य की परंपरा पर भी टिप्पणी की गई, जो इस प्रकार है। भक्ति काल में भी केवल आत्मसमर्पण, भक्ति में तल्लीनता आदि भाव ही हमारे तुलसी सूर आदि साहित्य में भर पाए थे। उनके बाद रीतिकाल में विचारधारा तो दूर, हमारे कवि कविताबद्ध कोक शास्त्र लिखने लगे। उनसे इस अधोगति के अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वर्तमान काल में भी किसी स्वस्थ विचारधारा का नाम नहीं। इस लेख में श्री चौहान ने जिस तरह सरकारी दौर से हजार वर्ष के हिंदी साहित्य को प्रतिक्रियावादी कहकर खारिज कर दिया, उससे उस युग की आरंभिक प्रगतिशील आलोचना दृष्टि का आभास मिलता है। श्री चौहान के ये आरंभिक निबंध प्रगतिवाद नामक पुस्तक में संकलित है। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने हंस का संपादन दायित्व संभाला। उस समय तक उनके दृष्टिकोण में भी थोड़ी उदारता आ चुकी थी और वे सुमित्रानंदन पंत के काव्य के प्रशंसक हो चले थे। आगे चलकर 1951 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली से त्रैमासिक आलोचना का संपादन आरंभ किया। चौहान जी के आलोचनात्मक निबंधों के 3 संकलन साहित्य की परख, साहित्यानुशीलन तथा आलोचना के मान प्रकाशित हुए, जिनमें अधिकांशतः पुस्तक समीक्षाएं हैं और कुछ सैद्धांतिक निबंध हैं। चौहान जी साहित्य में पूर्ण मानव की प्रतिष्ठा को कायम में मानते हैं और उसी के आधार पर किसी कृति के मूल्यांकन के हामी हैं। वे मार्क्सवाद में कट्टरता के विरोधी और उदारता के समर्थक हैं। फिर भी उनके साहित्यिक मूल्यांकन में एक स्पष्ट आग्रह रहता है। प्रगतिशील काव्यधारा के बहुत बड़े अंश को उन्होंने मानव द्रोही करार दिया तथा अधिकांश हिंदी साहित्य उन्हें द्विभाजन से ग्रस्त दिखाई पड़ने लगा। प्रकाश चंद्र गुप्त समय 1908 से 1970 ईस्वी चौहान जी से भी अधिक उदार प्रगतिशील आलोचक हैं, जिनके लेखों से यदि मार्क्सवादी आग्रह की इक्की दुक्की पंक्तियां निकाल दी जाए तो वे अंशतः शांति प्रिय द्विवेदी की प्रभाववादी शैली के उदाहरण प्रतीत होंगे। गुप्त जी की यह विशेषता है कि अंग्रेजी के शिक्षक होते हुए भी उन्होंने बड़ी निष्ठा से हिंदी साहित्य की पुरानी परंपरा का अनुशीलन और समसामयिक साहित्य का सहानुभूतिपूर्ण सर्वेक्षण किया। उनके 3 निबंध संकलनों आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 ईस्वी और साहित्य धारा 1956 ईस्वी में से उनकी आलोचना दृष्टि की व्यापकता का परिचय मिलता है। मार्क्सवादी आलोचकों में गुप्त जी ऐसे हैं जिन्होंने विध्वंसात्मक आलोचना से सदा परहेज किया। सुबोधता, सरलता और शालीनता उनकी आलोचना के उल्लेखनीय गुण हैं। मार्क्सवादी आलोचकों में सबसे विवादास्पद किंतु अन्यतम है राम विलास शर्मा 1912 ईस्वी। अंग्रेजी के अध्येता और शिक्षक होते हुए भी रामविलास शर्मा ने हिंदी भाषा और साहित्य के गौरव की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया, जिसका आरंभिक दस्तावेज है फिराक और हिंदी शीर्षक प्रसिद्ध लेखमाला। उन्होंने छायावादी काव्य और उसमें विशेषतः निराला के साहित्य की व्याख्या से आलोचना कार्य आरंभ किया और उनके आलोचना कर्म की उपलब्धि भी निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी है। आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल, उपन्यासकारों में प्रेमचंद और कवियों में निराला उन्हें सबसे प्रिय हैं और असंदिग्ध रूप से ये तीनों साहित्यकार उनके आलोचनात्मक मान के आधार स्तंभ भी हैं। इस दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना प्रेमचंद और निराला की साहित्य साधना स्वयं लेखक की ही नहीं बल्कि हिंदी आलोचना की उपलब्धियां हैं। अपने सहकर्मी कुछ अन्य मार्क्सवादी आलोचकों की तरह रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी साहित्य सिद्धांतों के कोरे सैद्धांतिक प्रतिपादन से ही संतोष नहीं किया बल्कि मार्क्सवादी दृष्टि से समूचे हिंदी साहित्य की परंपरा की नई व्याख्या प्रस्तुत करके मार्क्सवादी आलोचना का सामर्थ्य स्थापित कर दिया। यही नहीं, उन्होंने वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के साहित्य का भी सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया। आदि काव्य तथा भवभूति की करुणा अपने विषय की अप्रतिम आलोचनाएं हैं। इस प्रकार इस मार्क्सवादी आलोचक की दृष्टि में भारतीय साहित्य की समूची परंपरा का परिप्रेक्ष्य विद्यमान है, जो उसके मूल्यांकन को गुरुता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। यह ध्यान देने की बात है कि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक होते हुए भी जड़ मार्क्सवादी की तरह आलोचना कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। उनकी आस्था और सौंदर्य पुस्तक इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता और सामाजिक विकास शीर्षक निबंध में उन्होंने सौंदर्य की वस्तुवादी व्याख्या प्रस्तुत की। सौंदर्य तत्व को व्यक्ति या विषय के में नियत करने के बजाय उन्होंने उसे दोनों के संघात में देखा, पर साथ ही यह घोषणा की साहित्य भी शुद्ध विचारधारा का रूप नहीं है, उसका भाव और इंद्रिय बोध से घनिष्ठ संबंध है। इससे स्पष्ट है कि ललित कलाओं को विचारधारा के रूपों में गिनना सही नहीं है। साहित्य के स्थायी मूल्यों की समस्या, कालिदास और प्रेमचंद की परंपरा और आंचलिकता इस संग्रह के दो और महत्वपूर्ण निबंध हैं, जिनमें साहित्य के संबंध में कुछ मौलिक प्रश्नों पर बड़ी संजीदगी से विचार किया गया है। हिंदी आलोचना के इतिहास में अन्य शुक्लोत्तर आलोचकों की तरह रामविलास शर्मा के भी प्रस्थान बिंदु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं, किंतु उनसे रामविलास शर्मा इस बात में भिन्न है कि उन्होंने आचार्य शुक्ल का विरोध करने के स्थान पर उनके विचारों की पुष्टि करते हुए उनकी पुनर्व्याख्या की और साथ ही युगानुरूप विस्तार भी किया। पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक तथ्य यह है कि छायावाद के समर्थक आलोचक तो शुक्ल जी का खंडन करते आ रहे थे, प्रगतिशील आलोचक भी उसी सुर में सुर मिलाकर शुक्ल जी को प्रतिक्रियावादी मान बैठे थे। इस प्रकार हिंदी आलोचना में आचार्य शुक्ल की आलोचना करने की प्रवृत्ति एक फैशन का रूप चली थी। ऐसे वातावरण में डॉक्टर शर्मा ने आगे बढ़कर कहा कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार में प्रेमचंद या कवि निराला का। उन्होंने आलोचना के माध्यम से उसी सामंती संस्कृति का विरोध किया जिसका उपन्यास और कविता के माध्यम से प्रेमचंद और निराला थे। शुक्ल जी ने न तो भारत में के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिम के व्यक्तिवाद को। उन्होंने बाह्य जगत और मानव जगत की वास्तविकता के आधार पर नए साहित्य सिद्धांतों की स्थापना की और उनके आधार पर सामंती साहित्य का विरोध किया और देशभक्ति और जनतंत्र की साहित्यिक परंपरा का समर्थन किया। उनका यह कार्य हर देश प्रेमी और जनवादी लेखक तथा पाठक के लिए दिलचस्प होना चाहिए। शुक्लोत्तर आलोचना में शुक्ल जी के विरुद्ध जो मोर्चा कायम हुआ उसमें विरोध के बिंदु अनेक थे। शुक्ल जी ने जिन काव्य प्रवृत्तियों की आलोचना की थी उनके केंद्र में उन्हें केंद्र में रखकर शुक्लोत्तर पीढ़ी के आलोचकों ने आलोचना की नई दृष्टि सामने लाने का हौसला दिखाया। इन काव्य धाराओं में मुख्य तीन थी, संत साहित्य, रीतिकाल का दरबारी साहित्य और छायावाद। इनके अतिरिक्त कुछ प्रगतिशील आलोचकों को भी शुक्ल जी की आलोचना में ब्राह्मण दृष्टिकोण दिखाई पड़ता था, या फिर साहित्य और सामाजिक जीवन को एक साथ पर अलग अलग देखने की कमी महसूस होती थी। रामविलास शर्मा ने संत साहित्य में योगियों की भूमिका शीर्षक के अंतर्गत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की वैचारिक असंगतियों पर विस्तृत विचार करते हुए संत साहित्य को हिंदी साहित्य भाषी जनता के नवजागरण तथा जातीय उत्थान का साहित्य माना। उन्होंने इस साहित्य को अत्याचार से पीड़ित जन साधारण की मुक्ति कामना से प्रेरित जनवादी सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में देखा। दरबारी काव्य परंपरा में उन्होंने नगेंद्र के मत की आलोचना करते हुए इस काव्य के विषय में आचार्य शुक्ल की मत की पुनः प्रतिष्ठा की। इस कविता के पीछे जो सामंती वर्ग आधार था उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें शुक्ल जी की आलोचना ही यथार्थ के निकट प्रतीत हुई। डॉक्टर शर्मा ने इसी प्रकार छायावाद के संबंध में शुक्ल जी की राय पर विचार करते हुए यह स्पष्ट किया कि वे नई विषय वस्तु के नहीं बल्कि अगोचर और परोक्ष से प्रेम के विरोधी थे और कला या शैली को संवारने के लिए लाक्षणिकता को हानिकारक समझते थे। अन्यथा उन्होंने प्रसाद की लोक पक्ष समन्वित कविता की प्रशंसा की है तथा पंत की रहस्य भावना को स्वाभाविक कहा है। यदि आचार्य शुक्ल नवीनता मात्र के विरोधी होते तो भारतेंदु युग की नवीनता चेतना का इतने उत्साह से स्वागत न करते। आचार्य शुक्ल की इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शर्मा ने हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा को उजागर करने का प्रयास किया। इस क्रम में भारतेंदु युग पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के अंतर्गत पुस्तकालयों में दबी पड़ी पत्र पत्रिकाओं तथा दुर्लभ कृतियों की छानबीन करके युग के सबसे बड़े के छोटे बड़े गौड़ प्रमुख लेखकों के कृतित्व के माध्यम से उदयकालीन हिंदी साहित्य की अत्यंत जीवंत तस्वीर प्रस्तुत की गई है। भारतेंदु युग के द्वारा डॉक्टर शर्मा ने अपनी परंपरा की एक अर्ध विस्मृत और उपेक्षित कड़ी को प्रेरणादायिनी रूप में उपस्थित किया। इसी प्रकार उन्होंने प्रेमचंद के साहित्य के सामाजिक अर्थों और कलात्मक तत्वों का उद्घाटन करके प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन किया, जिसके द्वारा द्वितीय श्रेणी के कलाकार समझे जाने वाले प्रेमचंद प्रथम पंक्ति में माने जाने योग्य प्रमाणित हुए। निराला के महत्व की प्रतिष्ठा का श्रेय तो असंदिग्ध रूप से रामविलास शर्मा को ही है। वैसे छायावाद युग में निराला के पक्ष का समर्थन नंदुलारे वाजपेयी ने भी किया था, किंतु निराला के साहित्य का वास्तविक अर्धोद्घाटन डॉक्टर शर्मा ने ही किया। इस दृष्टि से राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति आदि लंबी कविताओं तथा परिमल के गीतों की व्याख्याएं व्यावहारिक आलोचना से के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वस्तुतः डॉक्टर शर्मा के आलोचक कर्म की पराकाष्ठा निराला साहित्य के मूल्यांकन में ही दिखाई पड़ी। दो खंडों में प्रकाशित निराला की साहित्य साधना को स्वयं रामविलास शर्मा की साहित्य साधना का चरम बिंदु समझा जाना चाहिए। इस पुस्तक के प्रथम खंड में जैसा डॉक्टर शर्मा ने स्वयं भूमिका में स्पष्ट किया है, निराला का जीवन चरित्र है, परंतु उसका उद्देश्य निराला के पारिवारिक सामाजिक परिवेश से युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों से उनके जीवन के बाह्य रूपों के साथ उनके अंतर जगत से पाठकों को परिचित कराना है। अतः इस जीवन चरित्र में तथ्य संग्रह न होकर निराला के साहित्य सृजन की व्याख्या के लिए कवि व्यक्तित्व को समझने समझाने का प्रयत्न मिलता है। आलोचना की शब्दावली में इसमें कवि की सृजनात्मक कल्पना को उसकी अनेक रचनाओं की रचना प्रक्रिया को कवि व्यक्तित्व की दृष्टि से समझा गया। निराला के जीवन के उस रहस्यमय खंड को जिसे उनकी विक्षिप्त मन स्थिति कहा जाता रहा है, अत्यंत सूक्ष्म और गहरा अध्ययन करके डॉक्टर शर्मा ने उनके साहित्य के मर्म को मर्म से जोड़ने का प्रयत्न किया। हिंदी में साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी अध्ययनों की कमी नहीं, परंतु ऐसा अध्ययन जिसमें ये दोनों अलग-अलग खानों में बटे न रहकर एक इकाई बन जाए, एक की समझ दूसरे के मूल्यांकन में सहायक हो जाए और एक के सही ज्ञान के लिए दोनों की पारस्परिकता का ज्ञान अपरिहार्य प्रतीत होने लगे, इस ग्रंथ से पहले देखने में नहीं आया। डॉक्टर शर्मा ने सही स्वीकार किया है कि इस रचना में किसी हद तक निराला साहित्य का मूल्यांकन भी शामिल है। निराला हिंदी के प्रमुखतः शक्ति और ऊर्जा के साहित्यकार के रूप में विख्यात हैं। उनके व्यक्तित्व कवि व्यक्तित्व के अध्ययन के माध्यम से डॉक्टर शर्मा ने पहली बार करुणा को उनके मूल भाव के रूप में रेखांकित करते हुए उन्हें ट्रेजेडी के महान लेखकों की पश्चिमी परंपरा से जोड़ा। यह ट्रेजेडी सेंस वाल्मीकि भवभूति तुलसी की भारतीय कवि परंपरा में और विश्व के सभी महान कवियों की कृतियों में मिलती है। इस प्रकार निराला विश्व की महान कवि परंपरा से और भारतीय साहित्य की एक विशिष्ट परंपरा से सहज ही जुड़ जाते हैं। इसके अलावा निराला के जीवन चरित्र के बहाने डॉक्टर शर्मा ने उस समय के हिंदी साहित्य के वातावरण और परिवेश का जो अंतरंग परिचय प्रस्तुत किया है, वह जैसे इतिहास ग्रंथों में अनुपलब्ध घटनाओं के आधार पर निराला के समकालीन साहित्यिक इतिहास की पुनर्रचना है। इस प्रकार वह ग्रंथ एक साथ किसी हद तक उनके साहित्य का मूल्यांकन और समय का साहित्यिक इतिहास भी प्रस्तुत करता है। दूसरे खंड का सीधा संबंध उनके साहित्य से है। इस खंड की एक विशेषता जो रामविलास शर्मा के इससे पहले के कृतित्व में कम पाई जाती है, निराला साहित्य के कलापक्ष का विस्तृत अध्ययन किया है। पुस्तक में जितने पृष्ठ निराला की विचारधारा और भावबोध विवेचन को दिए गए हैं, लगभग उतने ही कला विश्लेषण को भी। इस विवेचन में कलागत तत्वों की सूक्ष्म और गहरी पकड़ है, किंतु इसकी योजना में कोई मौलिकता नहीं। निराला साहित्य का सर्वांग अध्ययन प्रस्तुत करने की प्रेरणा के साथ इस अंश की रचना के पीछे यह प्रमाणित करने का आग्रह जान पड़ता है कि वे सामाजिक चेतना के अध्येता होने के साथ ही कुशल कला पारखी भी है। उपसंहार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने छायावाद के बारे में नए सिरे से कुछ बातें अवश्य कही है। ग्रंथ के पिछले भाग में रविंद्र, तुलसी और सूर आदि कवियों के साथ निराला साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह तुलना बहुत कौशल से की गई है, फिर भी इसमें तारतम्य या तुलनात्मक आलोचना के उसी रूप का आभास मिलता है जो पंडित पद्म सिंह शर्मा और कृष्ण बिहारी मिश्र ने बिहारी और मतिराम की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए अपनाया था। पुनर्मूल्यांकन यदि आलोचना के प्रमुख कार्यों में से है एक है, तो रामविलास शर्मा ने निश्चय ही हिंदी साहित्य के अनेक प्रमुख लेखकों का पुनर्मूल्यांकन किया और भारतेंदु, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, निराला जैसे चार महारथियों की पूर्ण समीक्षा लिखकर एक तरह से आधुनिक हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध आलोचनात्मक इतिहास ही लिख दिया। अपने समसामयिक साहित्यकारों में डॉक्टर शर्मा ने सहृदयता के साथ जिन प्रिय लेखकों की गंभीर समीक्षा प्रस्तुत की, उनमें वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त नई प्रयोगशील कविता से प्रीति न होते हुए भी उन्होंने अज्ञेय, शमशेर तथा मुक्तिबोध के काव्य का भी तल स्पर्शी विश्लेषण किया है। इस प्रकार एक अथक जागरूक आलोचक की तरह उन्होंने अपने समकालीन साहित्य में से भी जीवंत संपर्क बनाए रखा। यह बात अलग है कि उनके यहाँ समकालीन का अर्थ है समान आयु वर्ग के रचनाकार। उन्होंने अपने समय के युवा रचनाकारों की पीठ थपथपाकर उनके बीच तात्कालिक लोकप्रियता अर्जित करने के लोभ से अपने को बराबर बचाया। पिछले वर्ष प्रकाशित रूप तरंग और प्रगतिशील कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि में प्रगतिशील कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि को एक बार फिर स्पष्ट करते हुए उन्होंने जो निबंध लिखा, वह स्वयं एक स्वतंत्र पुस्तक के लिए पर्याप्त सामग्री है। रूप तरंग के साथ इस निबंध के छपने के औचित्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, निबंध मैंने शुरू किया था रूप तरंग के दूसरे संस्करण की भूमिका के रूप में, फिर क्रमशः उसका विस्तार होता गया और उसे स्वतंत्र निबंध के रूप में देना ठीक जान पड़ा। रूप तरंग के साथ उसका छपना अनुचित नहीं है। कारण और भी है और वह अधिक महत्वपूर्ण है। रूप तरंग में कुछ कविताएं समकालीन राजनीति पर हैं, उस राजनीति की चर्चा भी निबंध में है। इस तरह निबंध को आप रूप तरंग की भूमिका समझकर पढ़ सकते हैं। वैसे आप रूप तरंग को मेरे सारे गद्य लेखन की भूमिका समझकर पढ़े तो और भी अच्छा है। मेरे समस्त विवेचनात्मक गद्य के भाव स्रोत यही है। लंबे समय से कवि रूप में अपनी पहचान बनाने का मोह रामविलास शर्मा में बढ़ा है। राजनीति की उनकी अपनी समझ है। जाहिर है कि वह समझ गद्य और कविता में समान रूप से प्रतिफलित होती है। दोनों में अंतर विरोध भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए एक की समझ दूसरे को पढ़े बिना मुकम्मल नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। दोनों के बीच संबंध पारस्परिकता का है, अधिक से अधिक पूरक का। यह संबंध कार्य कारण का नहीं, इसलिए अनिवार्य भी नहीं है। बहरहाल इस लंबे निबंध में एक सुगठित समग्र रचना के बजाय छोटे छोटे निबंधों का संग्रह अधिक प्रतीत होता है। रामविलास शर्मा के पूर्व परिचित दृष्टिकोण से कोई मौलिक अंतर नहीं आया। पंत के प्रति उनके रुख में इस दौरान कुछ मृदुता आई है, पर तारसत्तक की रचनाओं में छायावाद के उदात्त रूप की श्रेष्ठ उपलब्धि, राम की शक्ति पूजा के छंद की व्यापक और गहरी गूंज को इतने कवियों में एक साथ देखने दिखाने का दूरगामी प्रयास निराला के प्रति उनके स्थायी मोह को प्रकट करता है। पुराने आग्रह भी ज्यों के त्यों हैं। एक ओर निराला के गद्य और पद्य दोनों की प्रगतिशीलता और बहुविध प्रयोगशीलता को उन्होंने कवि के काव्य में यथार्थवाद के विकास के साथ जोड़कर देखा। दूसरी ओर पंत की तुलना में गिरजा कुमार माथुर की कविता में प्रगतिशील कविता का नया कलात्मक विकास उन्हें साफ दिखाई दिया। निराला के परवर्ती व्यापक स्तर पर उन्होंने प्रभावित होते हुए हैं और पंत के परवर्ती उनसे भिन्न कलात्मक विकास की नई दिशाएं खोजते हैं। निराला गालिब, तुलसी, कबीर की जातीय परंपरा में है। उसी में आगे चलकर त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, और ये तीनों कवि निराला के बहुविध काव्य प्रयोगों से सृजनात्मक रूप में प्रेरित हैं, बल्कि निराला से पहले की काव्य परंपरा से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, उन्हें साम्राज्य विरोधी साहित्य की रूपगत परंपरा का बढ़ाव भी त्रिलोचन में दिखाई पड़ता है। अपने समकालीनों में त्रिलोचन पर इतने विस्तार से शायद उन्होंने पहली बार लिखा है। यही बात नरेंद्र शर्मा के बारे में भी सत्य है, परंतु नरेंद्र शर्मा पर लिखा गया प्रकरण निबंध का अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया अंश जान पड़ता है। यह पुस्तक भी कवि मित्र नरेंद्र शर्मा को समर्पित है। शायद इसका संबंध उनकी कुछ समय पहले हुई मृत्यु की घटना से है। डॉक्टर शर्मा हिंदी में अपनी खास विवाद शैली में लिखी विध्वंसात्मक आलोचनाओं के लिए स्मरण किए जाते रहे हैं। इस दृष्टि से पंत जी की स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि की समीक्षाएं उल्लेखनीय हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि डॉक्टर शर्मा नितांत विध्वंसात्मक आलोचक हैं। वस्तुतः अपनी समझ से उन्होंने साहित्य में अवांछनीय तत्वों की सफाई करके विधेयात्मक मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया। हिंदी में ऐसी बेलाग दो टुक खरी आलोचनाएं बहुत कम लिखी गई हैं। वह धार और तलखी इस पुस्तक में नहीं दिखाई पड़ती। हिंदी आलोचना की भाषा के निर्माण में रामविलास शर्मा का योगदान महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय दुरुहता से मुक्त बोलचाल के पारदर्शी गद्य में जटिल से जटिल बात को सुलझाकर कहने की कला में डॉक्टर शर्मा बेजोड़ हैं। उनके हाथों आलोचना जन सामान्य के लिए भी पठनीय बन सकती है। गजानन माधव मुक्ति बोध समय 1918 से 1964 ईस्वी की गणना भी प्रगतिशील समीक्षा के अंतर्गत ही की जानी चाहिए। यद्यपि आरंभ में वे तार सप्तक के कवि के नाते विख्यात हुए, तथापि उनकी प्रखर गहरी और व्यापक आलोचना क्षमता का परिचय भी तार सप्तक के प्रकाशन के समानांतर ही मिलना आरंभ हो गया था। उनकी प्रथम आलोचनात्मक रचना कामायनी एक पुनर्विचार का पुस्तकाकार प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ, परंतु इस विषय पर कामायनी कुछ नए विचार शीर्षक से दो लेख क्रमशः हंस के नवंबर 1945 और फरवरी 1946 के अंक में बहुत पहले ही निकल चुके थे। शीर्षक के अनुरूप इन लेखों में उनकी दृष्टि की मौलिकता और परंपरा मुक्त चिंतन क्षमता का प्रमाण मिलता है। कामायनी पर पुनर्विचार करने की प्रेरणाओं के कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि कामायनी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराण पंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक शस्त्र बन गई है, और यह भी कि भाववादी आलोचकों ने प्रसाद जी से भी आगे बढ़कर कामायनी की रहस्यवादी मनोवैज्ञानिक अर्थ लगाया और उसके उपयोगी तत्वों को प्रच्छन्न कर दिया। मुक्तिबोध को शिकायत थी कि उन्होंने कामायनी के संबंध में हर तरह के ऊंचे किस्म की गलत फहमियां भी फैलाईं। वहीं हाजिर है कि उन्होंने इन गलत फहमियों को दूर करने की जिम्मेदारी महसूस की। दिलचस्प बात तो यह है कि इस विषय में मुक्तिबोध का मतभेद रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिवादियों से भी है। मुक्तिबोध ने मनु के चरित्र के साथ जोड़ी गई ऐतिहासिकता और देश कालातीतता का विरोध करते हुए उन्हें अपने समय की वास्तविकता के साथ जोड़ा। वेदकालीन मनु कामायनी का मनु नहीं है, उसे मनन मात्र का मानव मात्र का प्रतिनिधि कहना सरासर गलत है। मुक्तिबोध के अनुसार प्रसाद का मनु उसी वर्ग का मनु है जिस वर्ग के स्वयं प्रसाद हैं। वही यानी वह मध्य व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि है। इस टाइप की व्याख्या करते हुए मुक्तिबोध ने उसे अपने समय के श्रेष्ठ पूंजीवादी व्यक्तिवाद का पुत्र भी नहीं बल्कि सामंत व्यवस्था के शासक वर्गों का पुत्र कहा है, जो नई ऐतिहासिक सामाजिक स्थिति के कारण पूंजीवादी व्यक्तिवाद को लिए हुए अपनी सामंती परंपरा से विच्छिन्न होकर भी सामंती शासक वर्गीय प्रवृत्तियों की तानाशाहीयत को अपने खून से लिए हुए हैं। मनु की प्रवृत्तियों के संस्कार उन्होंने उसी वर्ग में ढूंढे हैं। अहंकार, विलासिता, आत्ममोह, निर्बंध, उच्च श्रृंखलता, व्यक्तिवादी साहस, व्यक्तिवादी निराशा, पाखंड और ऐसा आत्मग्रस्त निवीण आत्मविश्लेषण जो पराजय से प्रसूत होकर पराजयों की ओर ले जाता है, वही मुक्तिबोध प्रसाद की क्षमता और महत्व इसलिए नहीं स्वीकार करते कि उन्होंने मनुष्य को देश कालातीत शाश्वत मानव का रूप नहीं दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पूंजीवादी ह्रासगत सभ्यता के भीतर व्यक्ति के भीतरी विकेंद्रीकरण का प्रश्न बड़े जोर से उठाया। फलतः कामायनी मुक्तिबोध की नजर में द्विअर्थक रूपक कथा न होकर फैंटेसी है। उन्होंने उसकी रचना प्रक्रिया को एक विराट फैंटेसी के रूप में ही देखने समझने का प्रयत्न किया। वे कामायनी को मुख्यतः एक कवि की निजी और भीतरी प्रवृत्तियों के आधार पर निर्मित एक विराट काल्पनिक दृश्य चित्र मानते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने कामायनी की अंतर प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि कामायनी अपनी कथात्मक चरित्रात्मक के बावजूद भी वस्तुतः प्रमुख रूप से आत्मपरक काव्य है, परंतु साथ ही वे यह नहीं कहते कि मनु प्रसाद जी के मन अथवा व्यक्तित्व का पूर्णतः प्रतिनिधि करता है। कामायनी की रचना प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का परिचय देते हुए मुक्तिबोध वहीं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उसके आगे बढ़कर मनु को एक वर्ग चरित्र के रूप में देखते हैं और ध्वस्त सामंतवाद के अविष्ट चरित्र के रूप में उनकी समस्त चारित्रिक विशेषताओं का निरूपण करते हैं। मनु ही नहीं, कामायनी के दो अन्य महत्वपूर्ण स्त्री पात्रों ईड़ा और श्रद्धा की चारित्रिक व्याख्या भी इसी सूत्र में से जुड़ी है। उनकी दृष्टि में ईड़ा बुद्धिवाद की प्रतीक नहीं पूंजीवाद की प्रतिनिधि है और उस महाकाव्य में जितने भी पात्र हैं उनमें ईड़ा का व्यक्तिगत चरित्र दृढ़तम और उज्ज्वलतम है। इसके विपरीत श्रद्धा आत्मबद्ध भावुकता के आदर्शीकरण का नाम है। श्रद्धा को वे एक ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल के रूप में पाते हैं जिसके पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। उसकी दार्शनिकता गहन संवेदन क्षमता या अनुभूति संपन्नता की उपयोगिता तो उचित सामाजिकरण के अभाव में संदेह का विषय हो ही जाती है, परंतु इसके अलावा वह स्वयं इच्छा, ज्ञान और क्रिया के जिस सामंजस्य का वाचिक विधान करती है उसका कोई व्यवहारिक रूप उसके अपने चरित्र में नहीं मिलता। श्रद्धा की यह मसीहाई मुद्रा मुक्तिबोध के गले नहीं उतरती। पुस्तक के अंत में आंसू की रचना वृत्ति से कामायनी का संबंध जोड़ते हुए ऐतिहासिक रूप में मुक्तिबोध ने प्रसाद के काव्य रचना की प्रक्रिया की जो व्याख्या की है वह ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार कामायनी में प्रतिपादित दार्शनिक या आध्यात्मिक दृष्टि को उन्होंने जिस रूप में वर्ग व्यवस्था से जोड़कर देखा है उसके पीछे तर्क का बल है। कामायनी में समस्या का द्वंद्व का जो रूप चित्रित किया गया है, जिस प्रचंड अंतर विरोध के तनाव की कोख से कामायनी का जन्म हुआ है, उसके अनुरूप निदान की वास्तविकता या व्यावहारिकता संदेहास्पद है, क्योंकि इच्छा ज्ञान क्रिया का सामाजिक सामंजस्य वास्तविक जीवन क्षेत्र में होता है, न कि संसार से पलायन करके हिमालयीन शिखरों पर। प्रसाद ने वर्गीय चरित्रों के माध्यम से भावनाओं और अनुभूतियों का एक विराट काल्पनिक दृश्य चित्र तो प्रस्तुत किया है, परंतु इन चरित्रों का अकारण आदर्शीकरण करके इसी वर्ग का आगतिक पलायनवादी दर्शन प्रस्तुत कर दिया। यहाँ तक कि रहस्यवाद और आध्यात्मिक रंग देने के उत्कट प्रलोभन से ईरा जैसे प्रखर, गयात्मक, तेजस्वी, व्यवहारक्षम पात्र भी नहीं बच सके। कामायनी की वर्ग दर्शन पर आधारित विस्तृत पुनर्व्याख्या करके मुक्तिबोध ने आलोचक के रूप में अपनी मार्क्सवादी दृष्टि का प्रमाण प्रस्तुत किया है, परंतु इसके साथ उनके आलोचक का एक पहलू वह भी है जिसमें एक जागरूक रचनाकार के नाते वे अपनी रचना प्रक्रिया के निर्मम साक्षी प्रतीत होते हैं। बाद की रचन आलोचनात्मक कृतियां इसी रचना प्रक्रिया के सजग विश्लेषण की उपज हैं। एक साहित्यिक की डायरी 1966 ईस्वी और नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी इस दृष्टि से इन उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मुक्तिबोध आस्था से मार्क्सवादी थे, किंतु नई कविता के मूल्यांकन को लेकर वे पुराने प्रगतिवादी आलोचकों से अलग थे। उन आलोचकों से उन्हें यह खास शिकायत थी कि उन्होंने अपनी नासमझी के कारण नई कविता का पूरा क्षेत्र अपने प्रतिपक्षियों को समर्पित कर दिया। उनकी राय में किसी जमाने में प्रतियोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी। इस प्रवृत्ति से अपना विरोध प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि वे प्रगतिवादी आलोचक बनते हुए साहित्य की जीवन भूमि से असंपृक्त रहकर साहित्यांकित जीवन और साहित्य सृजन की वास्तविक मानव भूमि, इन दोनों में घनिष्ठ परस्पर संबंध के स्वरूप का, इन दोनों के अपने अपने विशिष्ट स्वरूप का आकलन न करते हुए या छिछली सतही दृष्टि से उनका आकलन करते हुए न्याय निर्णय प्रदान करते हुए इस प्रकार करते हैं। इस प्रकार मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी आलोचना को सतहीपन से उबार कर गहराई तक ले जाने का प्रयास किया है। मुक्तिबोध का दूसरा संघर्ष नई कविता के व्यक्तिवादी अंतर्मुखी साहित्य सिद्धांतों से था। उन्होंने नई कविता की जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि का डटकर विरोध किया। व्यक्तिवादियों की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है कि आधुनिक भाव बोध संबंधी उनकी धारणा जन साधारण की उपेक्षा करके लघु मानव की उनकी कल्पना समाज और जनता को भीड़ कहकर उसका अपमान करने की प्रवृत्ति पूंजीवादी समाज रचना और साम्यवादी समाज रचना दोनों को औद्योगिक सभ्यता कहकर उस औद्योगिक सभ्यता के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व के नाश की अनिवार्यता मानना और इस प्रकार मानव की विफलता और अगतिकता को मूलभूत और चरम मानकर अनाशा की प्रस्थापना करना ये मुझे असंगत, अनुचित और हानिप्रद मालूम होती है। मुक्तिबोध ने आलोचक के दायित्व को आपद धर्म न मानकर धर्म माना है। इसलिए एक अत्यंत सजग आत्मचेता साहित्यकार की तरह उन्होंने कविता की रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। काव्य रचना के तीन क्षणों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण, दूसरा क्षण है उस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्णावस्था तक की गतिमानता। इन तीनों क्षण में से एक तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भाषा तथा भाव के बीच द्वंद्व का क्षण है और वह द्वंद्व अत्यंत महत्वपूर्ण और सृजनशील है। भाषा एक परंपरा के रूप में फैंटेसी के मूल रंग को विस्तृत कर देती है किंतु साथ ही उस फैंटेसी में संशोधन भी उपस्थित कर जाती है। साथ ही वह फैंटेसी अपने मूल रंगों के निर्वाह के लिए अपने मूल रंगों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा पर दबाव डालती है। उसके शब्दों और मुहावरों में नई अर्थमत्ता, नई अर्थ क्षमता, नई अभिव्यक्ति कर देती है। कला के तीसरे क्षण में यह महत्वपूर्ण द्वंद्व है। मुक्तिबोध की काव्य रचना का मुख्य माध्यम फैंटेसी है। उनके इस फैंटेसी मोह को लक्ष्य करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था कि यथार्थ को फैंटेसी में बदले बिना जैसे वे पकड़ ही नहीं पाते, अतः फैंटेसी की रचना की व्याख्या और उसमें निहित वास्तविक जीवन के अन्वेषण की विधि का निरूपण करके उस जैसे मुक्तिबोध अपनी रचना प्रक्रिया की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, इसी प्रकार लंबी नाटकीय कविता के रचना विन्यास में निहित सिद्धांत का निरूपण करके मुक्तिबोध ने इस विषय में अपनी सामर्थ्य असामर्थ्य का ही विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके शब्दों में यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता और जो छोटी होती है वे वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी हैं। विडंबना यह है कि जिन मुक्तिबोध ने स्वीकार किया है इस प्रकार की न मालूम कितनी ही कविताएं मैंने अधूरी लिखकर छोड़ दी, उन्हें खत्म करने की कला मुझे नहीं आती, यह मेरी ट्रेजडी है। वहीं उन्हीं मुक्तिबोध ने लंबी कविता की संरचना व्याख्या इस प्रकार की है। अब कविता कोई निबंध तो है नहीं कि जिससे लोगों को आज के हालात की जानकारी मिले, न वह कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत कर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित करते हुए करते रहते हैं। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है या बिंब बनकर या विचार बनकर। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। उसी प्रकार कविता के भीतर कथा तत्व भी भाव का इतिहास है। तो फिर ऐसी स्थिति में यह असंभव नहीं है कि कविता को अनेक क्रमबद्ध चित्रों में प्रस्तुत किया जाए अथवा अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्र कुछ इस तरह आलोकित और दीप्तिमान हो उठे हैं कि छंद बन जाए, गतिमान हो जाए और एक विशेष दशा की ओर प्रवाहित हो सके। मुक्तिबोध ने व्यवहारिक आलोचना से आरंभ किया, परंतु क्रमशः कलाकृति की रचना प्रक्रिया और संरचनात्मक विशेषताओं के विश्लेषण से गुजरते हुए उनके कला चिंतन की चरम परिणति एक संपूर्ण कला सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश में हुई। उनके सारे आलोचनात्मक कृतित्व को देखते हुए निसंकोच कहा जा सकता है कि ये नए प्रगतिशील आलोचकों में वे सबसे प्रखर और गंभीर आलोचक थे। किसी कवि में आलोचना की ऐसी चिंतन शक्ति दुर्लभ ही है। डॉक्टर नामवर सिंह, 1927 ईस्वी। हिंदी के आधुनिक आलोचकों में नामवर सिंह का स्थान इस दृष्टि से विशिष्ट है कि वे समाजवादी जीवन दृष्टि और नई कविता की भावभूमि के समवेत बोध को लेकर आलोचना में प्रवृत्त हुए। अपने पूर्ववर्ती प्रगतिवादी आलोचकों से उनकी भिन्नता इस बात में है कि उन्होंने नई कविता को सहानुभूति से देखा है। मुक्तिबोध प्रगतिवादी आलोचकों से ही इसी बात की मांग कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि नामवर सिंह की पहली महत्वपूर्ण आलोचनात्मक समीक्षा छायावाद 1954 ईस्वी पर सामने आई। यह वह समय था जब छायावाद क्रमशः समर्थन और विरोध के दो दौरों से गुजर चुका था। अन्य आलोचकों से यह आलोचना इस बात में भिन्न है कि जहां औरों ने छायावाद को ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया, वहां नामवर सिंह ने छायावादी कविता में के छाया चित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन किया। यह निश्चय ही मार्क्सवादी आलोचना का अधिक परिष्कृत रूप था। इस पुस्तक की एक बहुत बड़ी विशेषता इसकी शैली की सृजनात्मक और ताजगी है, जो अध्यायों के शीर्षकों से ही स्पष्ट हो जाती है। यह बात अलग है कि बाद में उनके आलोचकों को इन शीर्षकों में रोमानियत दिखाई पड़ी। काव्य समीक्षा की उनकी दूसरी पुस्तक कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी दो खंडों में बटी है। प्रथम खंड में परंपरा के प्रतिष्ठित प्रतिमानों की प्रासंगिकता पर अत्यंत ध्वंसात्मक शैली में विचार किया गया है और दूसरे खंड में नई कविता के संदर्भ में काव्य मूल्यों का प्रश्न उठाया गया है। पुस्तक का यही अंश अधिक विधेयात्मक और महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ की मुख्य चिंता इस बात की चिंता है कि प्रगीत कविता कविता का पर्याय हो गई है और प्रगीत का प्रतिमान कविता का प्रतिमान हो गया है। इसलिए कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने की दृष्टि से आत्मपरक नई कविता की दुनिया से बाहर निकालकर उन कविताओं को भी विचार की सीमा में लाना आवश्यक है जिन्हें किसी अन्य उपयुक्त शब्द के अभाव में सामान्यतः लंबी कविता कहा जाता है। नामवर सिंह को शिकायत उन तमाम प्रतिमानों से है जो वैयक्तिक और आत्मपरक छायावादी संस्कारों से गढ़े गए हैं। इसलिए उन्होंने आत्मपरक कविता के सीमित दायरे से बाहर निकलकर काव्य के प्रतिमान निर्मित करने की उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया जिसकी कमी मुक्तिबोध भी महसूस कर रहे थे। नामवर सिंह ने इस पहचान को रेखांकित किया है कि दरअसल आत्मपरक प्रगीत बनाम पुस्तक वस्तुपरक लंबी कविता के इस संघर्ष के मूल में केवल काव्य रूपों के वरण की समस्या नहीं है, बल्कि इसका संबंध पूरी कविता की बनावट संबंधी दो भिन्न काव्य दृष्टियों से है जिनके अंतर्गत भावबोध से भाषा तक के सभी स्तर शामिल हैं। छायावादी भावबोध की कविताओं के अतिरिक्त उधर नई कविता के अंदर जो आत्मपरक दृष्टि पर छोटी या बड़ी कविताएं लिखी गई हैं, वे अपने रचयिताओं की गैर रोमांटिक घोषणाओं के बावजूद मूलतः रोमांटिक हैं और एक औसत रोमांटिक प्रगीत के समान ही इनमें भी वैयक्तिकता आत्मपरकता अनुभूतियों की जटिलता के अभाव के साथ ही बिंबमयता और एक खास कोट की रोमांटिक काव्य भाषा के प्रयोग प्राप्त होते हैं। इसलिए इन कविताओं में वस्तु जगत की समझदारी के साथ पर केवल अनुभूति की ईमानदारी का आग्रह किया जाता है। कविताओं के इस वर्ग के विरुद्ध नामवर सिंह ने मुक्तिबोध की कविताओं के रूप में अपने काव्य के उन मूल्यों पर बल देने का दावा किया जो अपनी दृष्टि से सामाजिक और वस्तुपरक हैं और आज के ज्वलंत एवं जटिल यथार्थ को अधिक से अधिक समेटने के प्रयास में कविता को व्यापक रूप में नाट्य विन्यास प्रदान कर रहे हैं और इस तरह तथा कथित बिंबवादी काव्य भाषा के दायरे को तोड़कर सपाट बयानी आदि अन्य क्षेत्रों में कदम रखने का साहस दिखा रहे हैं। जाहिर है कि नामवर सिंह ने जिन काव्य मूल्यों का प्रश्न उठाया है उनमें भाषा से लेकर भाव बोध के स्तर तक काव्य रचना को एक सापेक्ष इकाई के रूप में देखा गया है। एक खास भाव बोध और संस्कार से एक खास कोटि और बनावट की कविता पैदा होती है। संरचना और भाव बोध को स्वायत्त रूप में देखना बेमानी है। इसलिए जब वे बाह्य परिवेश और कविता में अभिव्यक्त संसार का संबंध और उससे उत्पन्न मूल्यों का प्रश्न उठाते हैं, कविता में अभिव्यक्त अनुभूति की जटिलता और तनाव तथा उस अनुभूति की प्रामाणिकता तथा काव्यगत ईमानदारी के स्वरूप का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, तो साथ ही काव्य भाषा और सृजनशीलता के संबंध जैसे मूलभूत प्रश्न पर भी विचार करते हैं। बिंब प्रधानता से सपाट बयानी तक आज की कविता की यात्रा को उसके भावबोध के इतिहास से जोड़कर देखते हैं और उसकी संरचना के प्रगीतात्मक और नाटकीय रूप तथा अभिव्यक्ति की युक्तियों से में विसंगति और विडंबना के प्रयोग का प्रश्न भी उठाते हैं। नई कविता के संदर्भ में उस कविता के बीच से पैदा होने वाले उन काव्य मूल्यों के प्रश्न को इतने बड़े पैमाने पर और इतने विचारोत्तेजक रूप में सामने शायद इससे पहले नहीं उठाया गया। मूल्यों की चर्चा केवल सैद्धांतिक धरातल पर न करके परिशिष्ट में मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की व्यवहारिक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए जैसे एक ओर पूर्व भाग में चर्चित प्रतिमानों की व्यवहारिकता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है और दूसरी ओर इन प्रतिमानों का आधार स्पष्ट किया गया है। काव्य समीक्षा के अलावा सामान्य रूप से साहित्यिक मूल्यों को स्पष्ट करने का प्रयत्न उन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास और आलोचना में संकलित निबंधों में भी किया है। व्यापकता और गहराई शीर्षक निबंध में साहित्य के संदर्भ में आम तौर से प्रचलित उस दृष्टिकोण का खंडन किया गया है जिसके अनुसार इन दोनों को विरोधी गुणों के रूप में देखते हुए गहराई को प्रायः अधिक मूल्यवान ठहराया जाता है। नामवर ने सिंह ने अपने इसमें परस्पर विरोध के स्थान पर सहसंबंधी संबंध की व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त इतिहास का नया दृष्टिकोण समय 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार 1962 ईस्वी शीर्षक निबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई है। इन संबंधों के माध्यम से लेखक ने मूल्यांकन परक आलोचना और साहित्यिक इतिहास के बीच संबंध स्थापना की है। ये लेख इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है कि इनमें साहित्य के इतिहास लेखन की एक नई समीक्षा नई लेखन की एक नई दिशा का स्पष्ट निर्देश किया गया है। समीक्षा के क्षेत्र में प्रायः उपेक्षित कथा समीक्षा को भी अपनी पुस्तक कहानी नई कहानी 1964 ईस्वी की रचना से नामवर सिंह ने काव्य समीक्षा के स्तर तक उठाया। हिंदी आलोचना के इतिहास में काव्य समीक्षा की एक समृद्ध परंपरा वर्तमान थी, किंतु कथा समीक्षा की किसी सुनिर्दिष्ट परंपरा के अभाव में सूक्ष्म विश्लेषण के माध्यम से समसामयिक कथा साहित्य की यह समीक्षा महत्वपूर्ण कही जाएगी। यूं कहानी की समीक्षा के लिए उन्होंने कविता के प्रतिमानों का प्रयोग किया या कथा समीक्षा के पृथक प्रतिमान विकसित किए, यह विवादास्पद है। पिछले 20 वर्षों में रचनाकार के क्षेत्र में नए प्रयासों के द्वारा जो साहित्यिक मान्यताएं सामने आई, नामवर सिंह ने उन्हें अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं और सिद्धांत चर्चा के लिए व्यवस्थित रूप दिया। लंबे अंतराल के बाद उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी और वाद विवाद संवाद 1979 ईस्वी। पहली के रचना काल और प्रकाशन काल में बहुत अंतर नहीं है, जबकि दूसरी के संकलित लेखों के बारे में यह बात सही नहीं है। उसके सबसे पुराने लेख एकालाप और संवाद का रचना कर वर्ष 1964 है और ताजा लेखों जनतंत्र और आलोचना की स्वायत्तता प्रासंगिकता पर पुनश्च प्रलय की छाया के माध्यम से आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना तथा आलोचना और संस्थान का रचना वर्ष 1988 ईस्वी है। इस प्रकार पुस्तक के लगभग एक तिहाई की रचना एक वर्ष में हुई है और शेष 2 तिहाई के लेखन की दृष्टि से 25 वर्ष लंबे ऊसर काल के दौरान। यह बात अलग है कि इन वर्षों में अंतराल के बावजूद विराम नहीं आया, न लिखने या काफी लिखने की शिकायत करने वालों को नामवर सिंह जवाब दे सकते हैं और देते हैं कि वे लिखाण नहीं है। किसी समस्या को लेकर लिखने की बौद्धिक व्यवस्था या दबाव जब तक नहीं होता तब तक वे नहीं लिखते। सो परिस्थिति का दबाव इन तमाम लेखों और दूसरी परंपरा की खोज के मूल में है। दूसरी परंपरा की खोज आकाश धर्मी गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रति श्रद्धांजलि है और वाद विवाद संवाद के तमाम लेख लेखक के अपने शब्दों में किसी न किसी विशिष्ट संदर्भ में से संबद्ध हैं। अपने नाम के बावजूद इन्होंने वाद विवाद जैसा बहुत नहीं है, शायद इसलिए इनके प्रकाशन के बाद वैसा विवाद खड़ा भी नहीं हुआ जैसा दूसरी परंपरा की खोज के प्रकाशन के बाद देखने में आया था। दूसरी परंपरा की खोज की गणना पिछले दशक की महत्वपूर्ण रचनाओं में की जाएगी। निराला की साहित्य साधना में रामविलास शर्मा ने निराला के जीवन संघर्ष के हवाले से छायावादी काव्य आंदोलन के इतिहास की पुनर्चर्चा की थी। उस कृति का विशेष महत्व जीवनी के परंपराबद्ध रूप का अतिक्रमण करने की दृष्टि से है। दूसरी परंपरा की खोज में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन की घटनात्मक ब्यौरों का विस्तार करने के बजाय उन्हीं अंशों की चर्चा की है जो उनकी रचनात्मक दृष्टि की समझ में सहायक हो सकते थे। आलोचक नामवर सिंह के आलोचकों ने तत्काल इसे रामचंद्र शुक्ल बनाम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहस का रूप दे दिया। कविता के नए प्रतिमान में अज्ञेय के विरुद्ध मुक्तिबोध को प्रतिष्ठा करने के लिए इसकी समानांतर ढूंढ लेने के बाद विवाद में एक खास मोड़ ले लिया और बहस का केंद्र बदल गया। स्मरण दिलाना अप्रासंगिक नहीं होगा कि निराला की साहित्य साधना के प्रकाशन के बाद ही कुछ ऐसे सवाल निराला बनाम पंत की बहस की शक्ल में इस तरह सामने आए थे कि शांति जोशी को पंत की एक जवाबी जीवनी लिखकर स्पष्टीकरण करने की जरूरत महसूस हुई। इस तरह के विवाद सही परिप्रेक्ष्य में रचनाओं की समझ के लिए अक्सर बाधक ही होते हैं। दूसरी परंपरा की खोज का महत्व इस बात में है कि उसमें कुछ ऐसी अवधारणाओं की परंपरागत मूल का प्रश्न उठाया गया है जिन्हें बड़ी सुविधा से पश्चिम की देन स्वीकार करके उनके पारंपरिक मूल विशेष आग्रहों के तहत खोज कर निश्चित कर दिया गया है। सौंदर्य की अवधारणा और सौंदर्य बोध का पारस्परिक विकास ऐसा ही प्रश्न है। भारतीय संस्कृति की विशुद्धता का सवाल भी ऐसी ही बहस तलब सवाल है जिस पर बार बार विचार होता रहा है। इसे हिंदी के दो आलोचकों की टकराहट का रूप देना मूल प्रश्न से मुंह चुराना होगा। अपने समय में जयशंकर प्रसाद ने भी कुछ ऐसे ही सवालों से जूझने की कोशिश की थी। पक्ष विपक्ष से सहमति अलग बात है, परंतु इसे पूरे सवाल को जिस परिप्रेक्ष्य में उठाया गया है उसे दो आचार्यों के बीच टकराहट का सवाल बनाकर उलझाने के बजाय उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह प्रश्न सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक रुचि के विकास और प्रतिबद्धता की पहचान से तो ताल्लुक रखता ही है। जिस शैली में इसे प्रस्तुत किया गया है उसकी रचनात्मक पठनीयता का अपना अलग आकर्षण है। प्रगतिशील के युग में छायावाद के विरुद्ध एक अन्य प्रवृत्ति का उदय हुआ जिसका विकास आगे चलकर प्रयोगवाद में हुआ। छायावाद के रुमानियत के विरोध में यदि एक ओर यथार्थवाद प्रेरित सामाजिक यथार्थ की प्रवृत्ति का उदय हुआ तो दूसरी ओर T.S. इलियट ने रोमांटिसिज्म विरोधी अभियान से प्रेरित होकर नव क्लासिकी दृष्टि पैदा की। पांचवें दशक की हिंदी आलोचना में इस दूसरी प्रवृत्ति के प्रतिनिधि लेखक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय खंड 5 प्रगतिशील समीक्षा समाप्त।